તારીખ 29/7/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 493 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 145.
सम्यक दर्शन के निवास का निवास के सर्वोत्कृष्ट स्थान रूप 6 पद है। इस विषय में विस्तार से यह पत्र लिखा गया है। शायद जल्दी जी स्वामी को यह पत्र लिखा है। उसमें प्रथम पद का स्वाध्याय चलता है कि आत्मा है उसका प्रमाण क्या, कैसे माने। आत्मा है उसको मानने के लिए प्रमाण, मैंने विशेष रूप से मान्य करने के लिए कौन सा सबूत है कि जिससे हम माने कि आत्मा है, ये बात चलती है। तो आत्मा है माने कौन है, कोई एक आत्मा नाम का जगत में पदार्थ है वो बात नहीं चलती है। आत्मा है उसमें आत्मा माने मैं हूं, तो मैं मेरे को, मेरे अस्तित्व को किस तरह से मान्य करूं, किस प्रमाण से मान्य करूं, उस विषय में जो कृपालु देव कहते हैं कि स्वपर प्रकाशक ऐसी चैतन्य सत्या का प्रत्यक्ष गुण के कारण से, किस कारण से माना जाए अपने अस्तित्व को, तो गुण के कारण से माना जाए, गुण माने स्वभाव के कारण से माना जाए। गुण का मतलब होता है स्वभाव। किसी भी पदार्थ का कोई सत्व है, कोई तत्व है, या किसी भी पदार्थ का कोई सर्वस्व है, तो इसका स्वभाव है। तो आत्मा का सर्वस्व क्या है, आत्मा का सर्वस्व इसका स्वभाव है। अगर आत्मा में से स्वभाव को निकाला जाए तो आत्मा ही नहीं रहता, पर वही हो रहा है आज। संसार के मिथ्यात् और ज्ञान के परिणमन में वही हो रहा है कि हम अपने को मनुष्य रूप में अनुभव करते हैं, हम फलाने फलाने हैं, फलाने संप्रदाय वाले हैं, फलाने परिवार वाले हैं, फलाने समाज वाले हैं, फलाने गांव वाले हैं, हम तो कलकत्ता वाले, या हम तो हिंदुस्तान वाले भारतीय जन, और हम मनुष्य हैं। यहां से लेकर के जितना भी हमारा स्वीकार है, जिस तरह से, जिस प्रकार से हम अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं, उसमें स्वभाव का अभाव हो रहा है हमारी मान्यता में और हमारे अनुभव में, अनुभव ज्ञान में। ऐसे स्वभाव का अभाव तो हो ही नहीं सकता, स्वभाव का सर्वनाश तो हो ही नहीं सकता, लेकिन स्वभाव रहा तो भी क्या रहा, जब हमारा स्वीकार नहीं है तो इसका मतलब तो कोई रहा नहीं। उसको आत्मा में से सर्वस्व निकाल दिया हमने, और फिर हम ये शिकायत करते हैं कि हम दुखी हैं। क्या करें, हमको दुख होता है, इस प्रकार का किसी को किस प्रकार का, किसी को किस प्रकार का। लेकिन स्वभाव को निकाल दिया तो दुख नहीं होगा तो क्या होगा? पर स्वभाव में अनंत सुख भरा है, सुख धाम अनंत सुसंत चही। जो सुसंत सम्यक ज्ञानी संत ज्ञानी होते हैं वो ऐसे सुख धाम को रात्रि दिन चाहते हैं। उसने निकाल दिया, उसी को निकाल दिया तो जड़वत हो गया, चैतन्य सत्ता का लोप कर दिया श्रद्धा ज्ञान में से, तो आत्मा जड़वत हो गया। वो जड़ता मिटाने के लिए ये सम्यक उपदेश है, ये श्री गुरु का सम्यक उपदेश है कि देखो तुम्हारी चैतन्य सत्ता है, वो तुम्हारा स्वभाव है, और वो स्वपर प्रकाशक है। कैसी है? कि स्वपर प्रकाशक है। तो पर प्रकाशक पना तो सबको अनुभव गोचर है ही, हम इसको जानते हैं उसको जानते हैं कई प्रकार का, लेकिन स्वप्रकाशक पना है, उससे अनजानापना है, उस विषय में थोड़ा गहराई में जाना होगा कि स्वप्रकाशक मैंने क्या, स्व का प्रकाश मैंने क्या। आत्मा में एक प्रकाश नाम की शक्ति है। समय सारथी परिशिष्ट में भगवान अमृतचंद्र आचार्य देव ने आत्मा की 47 शक्ति का 47 शक्ति का वर्णन किया है। गुजराती में 46 अपने कहिए नहीं, हिंदी में 46 कहेंगे उसको, गुजराती में 47 कहिए, हिंदी में 47 कहते हैं। तो 47 शक्ति का जो वर्णन किया है उसमें 12वीं शक्ति है प्रकाश शक्ति। कौन सी शक्ति है? 12वीं प्रकाश शक्ति है। इसका रूप भी ज्ञान को है, एक गुण को अनंत गुण का रूप होता है। तो ये प्रकाश शक्ति कैसी है? तो विशद, मैंने स्पष्ट पहला शब्द रखा है, विशद स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति ऐसा लिखा है। प्रकाश शक्ति कैसी है? कि स्वसंवेदनमयता के कारण उसका प्रकाश होता है। स्व पर जानने वाला नहीं लिया है, स्व पर प्रकाशक लिया है, उसमें भी हेतु है कि प्रकाशक है वो वेदन को, प्रकाश वेदन को सूचित करता है, और वेदन होता है वहां जानपना होता है, लेकिन जहां जानपना होता है वहां वेदन होता है ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा सूक्ष्म विषय है, तो कृपालु देव ने बात लिखी है तो बहुत 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 मतलब अनुभव से, सूक्ष्मता से, गहराई से, बहुत गहराई से बात का निरूपण किया है। भले ही पद तो उतना ही है कि आत्मा है, लेकिन आत्मा है इसकी गहराई कितनी वो बात चलती है। तो ज्ञान का जो ज्ञान में वेदन है वो स्व पर प्रकाशक है, वो स्व प्रकाशक पना है। ज्ञान स्वयं अपने आप को सदा ही वेदता है, वेदता है ऐसा कहो, अनुभव करता है ऐसा कहो, या भोगता है ऐसा कहो, तीनों एक अर्थ है।
ज्ञान स्वयं अपने आप का अनुभव करता है, अपने आप का भेदन करता है, पर यही आत्मा का स्वभाव है, ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है। स्वयं का अनुभव करना वही आत्मा का स्वभाव है, उसको ज्ञान गुण कहते हैं। अमृतचंद्राचार्य ने उसको ज्ञान गुण कहा है 142 श्लोक में निर्जराधिकार। नानम ज्ञान गुणम बिना प्राप्तुम कथम अपि प्राप्तुम, ऐसा करके लिखा है। ज्ञान ज्ञान गुण के बिना प्राप्त होने वाला है ही नहीं। तो ज्ञान ज्ञान गुण को हमेशा वेदन करता है, लेकिन निश्चय उल्टा है। निश्चय वो है कि मैं पर को वेदता हूँ, पर को भोगता हूँ, पर को अनुभव करता हूँ, ठंडी को, गर्मी को, स्वाद में मीठापन को, खारापन को, कड़वापन को, ये अनुभव वास्तव में होता नहीं, होता नहीं, उतना ही नहीं हो सकता भी नहीं आत्मा को, अगर स्वभाव गुण से देखा जाए तो। प्रांतिगतपणे कुछ भी हो सकता है, अनुभव होता है वो भ्रांति है। वास्तव में अनुभव करने वाला जो ज्ञान गुण, उसमें शिवा ज्ञान किसी अन्य भाव और अन्य द्रव्य का अनुभव होना कोई गुंजाइश नहीं है,
प्रवेश ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं
है, अशक्य है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संभव नहीं है, बन ही नहीं सकता। इसलिए मुनिराज जो होते हैं अपने अपूर्व अवसर का चला, तो इतने उपसर्ग परिसर में आत्मा में कैसे रह सकते हैं, रहा कैसे जाए, तो मामूली तो बात नहीं। कोई बाघ खाता भी है, मिच्छू काटता भी है, सब होता है, और कोई बैरी आता है तो तलवार से घाव भी मारेगा, कुछ भी हो सकता है, कैसे टिक पाएंगे। संवेदन के आधार से वो टिकते हैं, संवेदन उतना उग्र हो जाता है, उतना उग्र हो जाता है कि दूसरा वेदन का पता ही नहीं चलता है। लक्ष्य नहीं रहता, उपयोग नहीं रहता, बस मन ने लेने आ बधू है, वो उपयोग के लेकर के है सब। देखो इसका एक दृष्टांत है कि एक आदमी को, एक मनुष्य को बहुत दर्द हो रहा था, उतना दर्द हो रहा था वो सहन नहीं कर सके, उतना दर्द हो रहा था, पीड़ा, चिल्लाना पड़े, उतना दर्द हो रहा था, तो उपयोग तो वहां से जाएगा, खिसकेगा नहीं। कोई कहे कि ये खाओ मिठाई बहुत अच्छी बनाई, एक भाई साहब छोड़ो ने बात, ये क्या मिठाई खाने की बात करो, मेरा दर्द तो देखो, ये कोई मिठाई खाने का टाइम है, मेरा समय है क्या। ऐसा एक आदमी का 25 साल से एकलौता बेटा कोई किडनैप कर गया था, उसको छोड़ दिया किसी ने इसके घर पे 25 साल के बाद, और वो आ गया, और पैर जो पीड़ा थी वो तो घुटन में थी, घुटन में दर्द होता है ना कभी कभी, बहुत होता है। तो उसने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, तो दौड़ के उसको भेट लिया, कहां चला गया इसका दर्द, मिट गया था क्या, दर्द मिटा नहीं था उसको, उपयोग और जगह चला गया, तो उपयोग गया तो दर्द गया, प्रैक्टिकल है कि नहीं है। तो कुछ सेकंडों के लिए, कुछ क्षणों के लिए मानो उसको कुछ दर्द था ही नहीं। वो चिल्लाता था, वो उतना हर्ष विभोर हो गया, इतना आनंद में आ गया, इतना खुशी हो गया, तो बस क्या हो गया, ये क्या चमत्कार हो गया। तो उसके पीछे बहुत दुखी हुआ था, उसके वियोग में काफी परिश्रम किया था, काफी दुख हुआ था, और सडनली आकर मिल गया एकाएक। तो उपयोग बदलता है तो कुछ चीज है ही नहीं, इसलिए कृपा गुरुदेव ने कहा मन ने लेने आप दो, तो मन वहां चला जाता था। और स्वसंवेदन में, उग्र स्वसंवेदन में जो मुनिराज रहते हैं, उनको उपसर्ग परिषद का कोई पता नहीं चलता। ये जो लड़के के प्रति परिणाम हुआ, वो परिणाम किस जाति का था? उसमें विभाव था ना, तो उसमें कसाई थी कि अकसाईपना था? पीड़ा के परिणाम कौन से थे? वो भी कसाई के थे। तो एक कसाई ने दूसरे कसाई को मारा, मारा कि नहीं? तो एक कसाई कसाई को मारे, उसमें कौन सी नवीनता है? एक कसाई स्वभाव तो बहुत बलवान है, आत्मा में जो शक्ति है वो तो अनंत शक्ति है, इससे स्वभाव में तो बहुत शक्ति है, कसाई में उतनी शक्ति नहीं है, फिर भी ऐसे कसाई को मारता है वो कसाई। तो एक कसाई परिणमन कसाई को मारे, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा स्व प्रकाशक आत्मा है, यानी अपने वेदन से, ज्ञान वेदन से अपने आत्मा का प्रकाश होता है कि मैं हूं। अस्तित्व ग्रहण, अस्तित्व को जानना, कैसे अस्तित्व को जाना? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से अरूपी पदार्थ जाना नहीं जाता, पर आत्मा एक अरूपी पदार्थ है, इसलिए पांच इंद्रियों और छठा मन से उसका जानना संभव नहीं है। पर हमारे पास जानने के साधन में पांच इंद्रियों और छठा मन के अलावा कोई चीज है नहीं, तब क्या करें? तो ज्ञानी कहते हैं कि तेरे पास वेदन तो है, जो ज्ञान वेदन तेरे पास है उसमें पांच इंद्रियों और छठा मन की कोई जरूरत नहीं है। तो पांच इंद्रियों और मन के उपयोग भाव जाता ही नहीं, पहुंच नहीं सकता, क्योंकि उसका तो पहुंचना बाहर की दिशा में होता है। और ज्ञान वेदन कहाँ है? कि ज्ञान के अंतरंग में है। ज्ञान वेदन तो ज्ञान के अंतरंग में है, वो ज्ञान का अंतरंग है, बाह्यंग नहीं है, और ये अनुभव गोचर होता है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो बात उतनी है कि सूक्ष्म रूप से अंतरंग में देखना पड़ता है, पर वो भी अनुभव की दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। फिर से, आत्मा है वो बात हमको कैसे अनुभव में आएगी? हमको बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है उसमें कि आत्मा है, इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, क्रियापद कौन है, या आत्मा है उसमें स्वपर प्रकाशकपना की परिभाषा क्या है, चैतन्य सत्ता माने क्या है, और गुण मैंने स्वभाव क्या है, ठीक है, वो बात विचार के ऊपर ऊपर के, तो संक्षेप में समझ लेना। अब उसी बात को प्रैक्टिकल साइड से समझना है कि हैपना मेरा है, वो मेरा अस्तित्व है और वो स्व प्रकाशक मैंने स्व संवेदन से ही अनुभव गोचर होता है कि मेरा अस्तित्व पना है, मैं हूं। इसके सिवा दूसरे किसी प्रकार से आत्मा का, स्वयं का, अपना अस्तित्व मालूम नहीं पड़ेगा। पर जब प्रथम अस्तित्व ग्रहण होता है तब स्वरूप निश्चय होता है, तब स्वरूप की पहचान होती है। ये बात कृपा देव ने व्याख्यान सार एक वचनामृत 220 में लिया है। वो बात गुजराती प्रत में पृष्ठ संख्या 758 760 760 आज सुधी अस्तित्व भाषू नहीं, भाषू मैंने मालूम पड़ा नहीं। क्या हुआ है, अनंत काल में अपना अस्तित्व मालूम नहीं पड़ा, गलत रूप से मालूम पड़ा। इसका कोई मतलब नहीं कि मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंश हूं, मैं वैसा हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, बनिया हूं। आज सुधी अस्तित्व भाषू नहीं, अस्तित्व भास थवाथी सम्यक्त्व प्राप्त थाय छे, क्योंकि स्वरूप की पहचान है। जे तो बात 751 में किया, परमार्थ की स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति, वेदन पूर्वक प्रतीति आएगी। तो दूसरा संकित यानी संकित का अनन्य कारण बोला, तो यह तो कहे कि संकित का अंग है ऐसा बोला है। कारण शब्द पूरा नहीं पड़ता है, ये संकित का कारण है ऐसा शब्द अच्छा नहीं लगा। तो क्या कहा कि संकित का अंग है। श्री गुरु आत्मा की अनुभूति कराने के लिए निमित्त है कि नहीं है। सुबह सुबह चर्चा चले ना घूमने में, तो एक बहन ने कहा कि नहीं निमित्त मत कहो उसको, तो क्या कहना फिर। तो कोई कृपालु देव ने बहुत अच्छा शब्द बोला, तो आत्मा का एक अंग है। क्या ठीक है वो बात, आत्मा का अंग है, निमित्त की जगह ऐसा कहे तो क्या अंग क्यों कहे, वो तो सर्वस्व है। अंग नहीं है किंतु सर्वस्व है।
अंग में भी समुचितता आती है,
अंग में एक अंश आता है, अंश आता है अंग में, अंगी नहीं आता है, पूरा अंगी नहीं आता है, अंग आता है तो एक अंश आता है। ठीक है, ऐसा लेना।
द्रव्यानुयोग कहाँ चले गया?
द्रव्यानुयोग से पर की बात है, ये भगवान की जो दिव्य ध्वनि छुपी, उस दिव्य ध्वनि का संकलन गंधर्व देव ने चार अनुयोग में किया, 12 अंक की रचना किया ना गंधर्व देव ने, उसमें चार अनुयोग का विभाजन कर दिया। द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, कथानुयोग कहो या प्रथमानुयोग कहो, और करणानुयोग यानी गणितानुयोग को और चरणानुयोग आचरण ऐसे चार विभाग कर दिया। चारों अनुयोग में चारे अनुयोग के संबंधित सिद्धांत है और उनकी सांगोपांग व्यवस्था क्या है वो तो सब दर्शाया है। पर चारों अनुयोग में और एक बात और भी है जो चारों में है, एक अध्यात्म है तो अध्यात्म का अनुयोग बना लेना एक पांचवा अपन को, चार में से एक्सट्रैक्ट करके इसका तत्व सत्व निकाल करके एक दूसरा अनुयोग बना लेना पांचवा अपने लिए वो, और चारों अनुयोग के सिद्धांतों को साइड में रख देना। फिर ये जो अध्यात्म है वो चारों अनुयोग के सिद्धांत से पर है। पर है इसका मतलब क्या है कि इसका लेवल ही अलग है। जैसे ट्रेन कितनी भी फास्ट चले लेकिन प्लेन के आगे वो नहीं चलने वाली, क्योंकि ट्रेन को तो फ्रिक्शन होता है, ऊपर में तो कोई है ही नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई स्टेशन नहीं, ऐसे इसका लेवल ही अलग है। ट्रेन का लेवल अलग है, प्लेन का लेवल अलग है, ऐसे द्रव्यानुयोग का लेवल अलग है, अध्यात्म का लेवल अलग है। ये इस भूमिका का अध्यात्म है, ये मुमुक्षु की भूमिका का अध्यात्म है कि मेरे गुरु मेरे सर्वस्व है, तो ज्ञानी भी कहेंगे, मुमुक्षु के अज्ञानी भी ऐसा ही कहेंगे, तो मेरे गुरु है वो मेरे सर्वस्व है।
जब आदम की बात आएगी तब स्वद्रव्य परतत्व की बात आएगी, आध्यात्मिक की बात आएगी तो सर्वस्व
सर्वस्व। आगम में स्वद्रव्य परद्रव्य द्रव्यानुयोग में कहेंगे, अध्यात्म में वो बात नहीं है, उसमें तो गुरु ही सर्वस्व हो जाता है।
866 में लिया है
दर्शन हो, दर्शन हो जिसका मंद होता है या व्यतीत होता है उसको द्रव्यानुयोग परिणमित होता है। 866 नंबर में बहुत बड़ा बहुत सुंदर पत्र है, द्रव्यानुयोग किसको परिणमित होता है। सूक्ष्म ज्ञान जिसका तगड़ा है उसको द्रव्यानुयोग परिणमित होता है ऐसा बात नहीं कहा, क्योंकि इसका संबंध ज्ञानावरणी से नहीं है, इसका संबंध दर्शन मोहनी से है। देखो 866 में क्या कहते हैं, द्रव्यानुयोग परम गंभीर और सूक्ष्म है। चारों अनुयोग में गंभीरता मैंने गहराई, क्योंकि स्वभाव की बात चलेगी वहां तो, और स्वभाव सूक्ष्म बहुत होते हैं, गुण है ना इसलिए सूक्ष्म है। सारा निर्ग्रंथ प्रवचन का रहस्य है, भगवान की दिव्य ध्वनि का रहस्य द्रव्यानुयोग में है, और शुक्ल ध्यान का अनन्य कारण है। तो शुक्ल ध्यान होता है उसमें तीन अनुयोग की बात नहीं लिया, द्रव्यानुयोग कारण है ऐसा लिया है, तो अपेक्षित बात है। चारों अनुयोग की अपेक्षा में द्रव्यानुयोग कारण पड़ता है, बाकी के तीन ने। और ऐसे शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान समुत्पन्न होता है। महाभाग्य से यह द्रव्यानुयोग की प्राप्ति होती है, ऐसे द्रव्यानुयोग की प्राप्ति महाभाग्य से होती है। दर्शन मोह का अनुभाग कम होने से अथवा नाश होने से और विषयों के प्रति उदासीनता होने से, कितने तीन कारण लिए हैं वो भी क्रम से लिए हैं। दर्शन मोह का अनुभाग घटने से और वो अनुभाग घटने से फिर विषयों के प्रति उदासीनता होने से और महत्पुरुष के चरण कमल की उपासना के बल से, श्री गुरु के चरण कमल की उपासना के बल से द्रव्यानुयोग परिणमित होता है। इसके सिवा द्रव्य
है या ये नहीं है आत्म कल्याण के बल
नहीं, वो बात नहीं किया। आत्मा में तो अनंत शक्ति थी ही और अभी है भी, अनंत काल चला गया, क्यों प्रकट नहीं हुआ? दर्शन मोह बंद हुआ नहीं और दर्शन मोह की मंदता पूर्वक यथार्थ रूप से वैराग्य और उदासीनता आई नहीं और श्री गुरु के चरण कमल की उपासना की नहीं।
चरण कमल की उपासना के बदले ही दर्शन मोह कम होता है,
उदासीनता
होता है। ये कम होने से वो होता
है, वो नहीं, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उल्टा क्रम है, उल्टा क्रम है, डिस्कनेक्टिंग क्रम है। ठीक बात है, बात तो ऐसे बैठ कि अगर सत्पुरुष के चरण, ज्ञानी पुरुष के, श्री गुरु के चरण कमल की उपासना का बल होता है का मतलब कि द्रव्यानुयोग का क्रीम जो है वो अध्यात्म है, अध्यात्म में परिणमित हो जाता है, आत्मा में परिणमित हो जाता है। अपना जो प्रकरण चलता है वो आत्मा है, वो प्रकरण चलता है कि हम है, आत्मा है माने हम है, तो हम है ऐसा हमारा हैपना हमको कैसे मालूम पड़ेगा? कि अगर हम हमारे अंतरंग में सूक्ष्म अनुभव दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर से हम अपने आप में सूक्ष्म दृष्टिकोण से, सूक्ष्म अनुभव के दृष्टिकोण से देखेंगे कि हमें क्या अनुभव हो रहा है, तो मालूम पड़ेगा कि ज्ञान ज्ञान का भेदन करता है। ज्ञान निरंतर ज्ञान का भेदन रूप रहता है, यहां से हमारा अस्तित्व हमें मालूम पड़ता है।
जानना और अनुभव करना
अलग अलग बात है, वेदन करना और जानना अलग अलग बात है, एक बात नहीं है। क्योंकि जानना स्वपर प्रकाशक है, वेदन स्वयं स्वप्रकाशक ही है, पर प्रकाशक वेदन नहीं होता, पर का वेदन नहीं हो सकता, पर का जानना हो सकता है। इसलिए पर के जानने में पर का वेदन नहीं होता और स्व के वेदन में स्व का वेदन भी होता और स्व का जानना भी होता है, दोनों बात इसमें है।
अनुभव का दृष्टिकोण माने अनुपना करना ज्ञान भी
नहीं, ऐसा नहीं। एक ज्ञान में उद्देश्य को धारण करना, दृष्टिकोण माने क्या? जैसे हमारे रसोई बनती है, सब्जी बनता है, दाल बनती है, तो हम उसको चखते हैं। जैसे बनाने वाले को डाउट हो गया कि नमक डाला कि नहीं डाला, यानी डाला तो बराबर डाला कि कम बेसी डाला, क्या हुआ? ऐसा जब हम उसको चखते हैं तो हम कोई एक दृष्टिकोण धारण करके, उद्देश्य को धारण करके चखते हैं कि अकेले खारापन को ही देखना है, क्योंकि दाल में तो मिर्च भी डाला है और मसाले भी डाले हैं, खटाई भी डाले हैं, मिठाई भी डाली है, गुजराती रसोई वाला ये लोग नहीं डालते,
लेकिन अकेले नमक को हम डिसाइड कर लेते हैं कि खारापन ठीक है कि नहीं है। खारापन जो है वो तो खारापन ज्यादा है, कम है या सप्रमाण है, तीन में से एक डिसीजन हम करेंगे, कैसे करेंगे? तो इस वक्त हमारे ज्ञान में कोई उद्देश्य होता है कि इसको ही देखना। वैसे ज्ञान के परिणमन में अन्य ज्ञेयों की आकृति का व्यवच्छेद करके एक शब्द प्रयोग किया है समय सार की 15 गाथा में अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में, कि अन्य ज्ञेय को व्यवच्छेद करके मैंने ज्ञान विशेष को गौण करके, कितना गौण के जैसे है ही नहीं। ज्ञान सामान्य मैंने अंतरंग ज्ञान को आविर्भूत करना, तो सूक्ष्म अनुभव क्या हो रहा है, ऐसे सूक्ष्मता से हमारे ज्ञान में अनुभव क्या हो रहा है तो सूक्ष्म तौर से अंदर में देखेंगे, और अनुभव को ही पकड़ना ऐसा दृष्टिकोण है तो ज्ञान वेदन है वो मालूम पड़ेगा, और ज्ञान वेदन मालूम पड़ने से पूरा आत्मा का अस्तित्व ग्रहण हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, जिसको स्वरूप की पहचान कहते हैं, जिसको स्वरूप का निश्चय कहते हैं, स्वरूप का लक्ष्य भी कहते हैं, भाव भाषण भी कहते हैं, और अस्तित्व ग्रहण भी उसको ही कहने में आता है। सब एक अर्थ है वहां ठीक है, तो एक लक्षण है, लक्ष्य में पूरा आत्मा आ जाता है। लक्षण के माध्यम से, लक्षण के दौरान ज्ञान पूरा आत्मा को ग्रहण करता है, क्योंकि अस्तित्व में तो अनंत गुण है, अस्तित्व में सब कुछ है, आत्मा का सब कुछ आत्मा के अस्तित्व में है, अस्तित्व से बाहर तो कुछ है ही नहीं आत्मा, तो अस्तित्व ग्रहण हुआ तो पूरा आत्मा ग्रहण हो गया, उसको स्वरूप का भाव भाषण या स्वरूप की पहचान कहते हैं। स्वसंवेदन, देखो वेदन ही स्वसंवेदन है, और इस स्वसंवेदन अंश वेदन अंश से ही अनुभवांश से ही प्रतीति परमार्थ मैंने पूरा आत्मा की आती है, परम प्रयोजन रूप विषय की आती है, प्रतीति आती है, मैंने खात्री हो जाती है कि मैं ऐसा ही हूँ, बस। तो निश्चय के साथ निश्चय बल होता है, निर्णय के साथ निर्णय बल पैदा हो जाता है, तो निर्णय बल को ज्ञानियों ने ज्ञान बल कहा है। क्या कहा है? वो ज्ञान बल वहां से उत्पन्न हुआ, वो ज्ञान बल बढ़ता जाएगा। निश्चय निर्णय का पक्ष हो गया, ज्ञान बल बढ़ेगा, साथ साथ आत्मरुचि बढ़ेगी, साथ साथ स्वरूप की महिमा भी बढ़ेगी, और स्वरूप की महिमा इतनी इतनी बढ़ेगी धुंध जड़ जाएगी। देखो पूरा जो अस्तित्व है, आत्मा का जो पूरा अस्तित्व है, वो साक्षात सिद्धपद स्वरूप है, इसलिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वेदन परोक्ष होता नहीं, कभी वेदन कभी परोक्ष होता नहीं, पर जो आत्मा है वो अनंत प्रत्यक्ष है, स्वरूप से ही, तो प्रत्यक्ष अंश से प्रत्यक्षता को ग्रहण कर लिया, स्वयं के रूप में ग्रहण कर लिया कि मैं साक्षात सिद्ध पद रूप हूं, मैं साक्षात सिद्ध ही हूं। लॉटरी लग गई, दरिद्री को लॉटरी लग गई, ओहो अनंत गुण की संपत्ति मेरे में, क्या चीज है ये? कोई लॉटरी लगने से पागल हो जाता है ना, ऐसे ये भी एक दफे तो पागल हो जाएगा, चाहे पागलपन दूसरे को दिखे नहीं दिखे, लेकिन धुन चढ़ जाएगी, किसी को गिनेगा नहीं, संसार के कोई पदार्थ कोई प्रसंग जो भ्रांतिगत रूप से सुखरूप अनुभव में आता था गया, क्योंकि भाष्यमान हुआ, स्वरूप भाष्यमान हुआ, अनंत सुख भी भाष्यमान हुआ, और अपने सुख के लिए हमारे जीव ने क्या क्या नहीं किया वो बताओ। जान की बाजी लगाई है कभी कभी, क्यों? सुख के लिए। तो जिसको अपने में अपना अनंत सुख का निधान भरा हुआ मालूम पड़ता है वो तो जान की बाजी लगाएगा कि कुछ भी लगाएगा, कोई कहने की जरूरत नहीं है। वो तो कल्पित सुख के लिए जान की बाजी लगाता था, अब तो वास्तविक सुख का समुद्र देखा, क्या हो जाएगा? इसका पुरुषार्थ हम सकता कहीं थामेगा नहीं। कोई जगत में ऐसा पदार्थ नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं कि इसे पुरुषार्थ को रोक सके। अरे स्वयं नहीं रोक सकेगा, दूसरे की क्या बात करें, खुद नहीं रोक सकेगा। तब सम्यक दर्शन सहानुभूति हो जाती है, वो तो हो जाती है, करनी पड़ती नहीं है।
स्वयं नहीं होता है,
भाव भाषण श्री गुरु के चरण कमल की उपासना के बल से होता है, ठीक। इसलिए वो बात कही कि बिना ज्ञाने किसी को बीज ज्ञान हुआ नहीं, न होने वाला भी है, और बीज ज्ञान सम्यक ज्ञान का कारण है। सहानुभूति रूप सम्यक ज्ञान है, उसका कारण तो बीज ज्ञान है, और बीज ज्ञान कभी ऐसे होता नहीं है। देखो सात सौ इकोत्तर में वो बात कही है उन्होंने, संख्या 385। आत्मा को समाधि होने के लिए, मैंने स्वरूप में स्थिर होने के लिए, आत्म स्वरूप में स्थिति के लिए कोई अर्थ किया है। सुधारक वो विज्ञान को सुधारक कहा है, कि जो मुख के विषय बरसता है, मुंह में आता है जैसे पानी आता है वैसे, कोई इंटेंशनली ऐसा लिखा है, ये मुंह की बात नहीं है, वो तो पर्याय में आता है, पर्याय मुख है इसका। तो यह एक अपूर्व आधार है, सारे मोक्ष मार्ग का आधार यहाँ पड़ा है, अपूर्व आधार है, क्योंकि वहां जो आत्मा का लक्ष्य होता है वो कभी छूटता नहीं है। निश्चय के विषय का लक्ष्य हो गया वहां, वो लक्ष्य कभी छूटेगा नहीं, मोक्ष मार्ग में भी वो लक्ष्य चालू रहेगा आत्मा का, भले उपयोग बाहर जाए लक्ष्य नहीं छूटेगा। यह एक अपूर्व आधार है, सम्यक दर्शन होने के लिए भी वही आधार है। इसलिए किसी भी रीत से किसी भी प्रकार से उसे बीज ज्ञान कहो तो हरकत नहीं, उसे बीज ज्ञान कहो तो हरकत नहीं। मात्र इतना भेद है, इन रहस्य है, वो बीज ज्ञान प्राप्त करने में एक रहस्य है, कि यह ज्ञान ज्ञानी पुरुष के जो उससे आगे हैं, बीज ज्ञान से आगे हुए हैं, अनुभूति संपन्न है उसके आगे हैं, आगे हैं मतलब वो आत्मा है, वो निमित्त नहीं है। देखो क्या कहा वहां, ज्ञानी पुरुष को आत्मा कहा है, आया कि नहीं आया, निमित्त नहीं कहा। इसलिए श्री गुरु को निमित्त कह करके गाली देना नहीं, उसको आत्मा ही कहना, निमित्त मत कहना। ज्ञानी पुरुष के जो उसके आगे हैं, आत्मा है,
ऐसे जानने वाला होना चाहिए। दूसरे से भी ज्ञान नहीं मिलेगा, कोई भी कैसा भी क्षोभ संभाला हो, ज्ञानी से ही ये बीज ज्ञान प्राप्त होता है। शास्त्र में तो इससे आगे की बात लिखी है, हमारे आगमों में तो इससे आगे की बात लिखी है कि ये जो देशना लब्धि है ना, वो ज्ञानी के सिवा नहीं मिलती। ये तो बीज ज्ञान तो इसके बहुत आगे की बात है, ये स्टेज तो कभी जाता नहीं, ये बीज ज्ञान तो कभी मिटता नहीं, जबकि चारों लब्धि अनंत बार आ गई। देशना लब्धि अनंत बार मिली, वो भी ज्ञानी के सिवा नहीं मिलती। जब देशना लब्धि नहीं मिलती तो बीज ज्ञान तो होगा ही कहां से, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह से ये जो आत्मा का स्वसंवेदन है, जिससे चैतन्य सत्ता मालूम पड़ती है, और वो प्रत्यक्ष गुण है, वो कोई परोक्ष गुण नहीं है, इसलिए दूसरा प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो विषय प्रत्यक्ष होता है उसके लिए कोई अन्य प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आगम प्रमाण, वो प्रमाण, वो प्रमाण कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। तिर्यंच को भी, तिर्यंच कहां आगम पढ़ते हैं, कहां बुद्धि लगाते, तर्क अनुमान लगाने का कहां है, उसके पास उतना क्षोभसम नहीं है, फिर भी वेदन प्रमाण से वो अपने आत्मा को ग्रहण करता है। स्वरूप हाँ, वो स्वानुभूति के काल में सम्यक्त नाम का गुण जो प्रकट होता है, वो स्वानुभूति चतुर्थ गुण स्थान शुरू होते ही ये गुण प्रकट हो, अनंत गुण प्रकट हो जाता है, उसमें सम्यक गुण तो पूरा पूरा प्रकट हो ही जाता है। भाव भाषण के काल में ज्ञान अपनी दिशा बदलता है और पुरुषार्थ भी अपनी दिशा बदलता है, वहां दिशांतर होता है। दिशा बदलने के बाद दशा बदल जाती है, पहले दिशा बदलती है फिर दशा बदलती है। तो एक कौन सा गुण प्रकट होता है, अगर ये प्रश्न है तो ज्ञान गुण प्रकट होता है वेदन से, और ज्ञान गुण के साथ ज्ञान बल भी प्रकट होता है।
तो लक्ष्मी बदलता है, लक्ष्मी
यहाँ तो ज्ञान का गुण वेदन गोचर होता है, इसलिए बात है वेदन अनुभवांश से प्रतीति आती है, पूर्णता के लक्ष्य में वेदन की बात नहीं है, इसलिए कहीं भी कल्पना नहीं करना है। ये जो वहां गुण प्रकट होता है तो ज्ञान गुण प्रकट होता है, ऐसा कह सकते हैं। इस विषय में गुरुदेव से चर्चा चली थी तो हमने ये कहा कि हम लोग तो मोटे रूप से, प्रचलित रूप से ये बात हमारे यहाँ चली है कि जब अनुभव होता है तो ज्ञान सम्यक जाति को प्राप्त करता है। इसके पहले ज्ञान जात्यांतर नहीं हुआ है ऐसा माना जाता है। तो ये भावभाषण के काल में जात्यांतर पना हुआ कि नहीं हुआ, आप कहिए, ये प्रश्न हमने निकाला था गुरुदेव के पास। हम कभी कभी एकांत में चर्चा करते थे ऐसे, तो बोला कि एक न्याय से जात्यांतर हो गया है, जाओ ज्ञान की जाति बदली है, दिशा बदली है, पर पुरुषार्थ ने साथ साथ दिशा बदली है, वीर्य गुण का उछाल आता है। जब कोई भी आत्मा मुमुक्षु जब अपने स्वरूप का भाववासन के स्टेज में आता है और अपना सिद्ध पद को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, अनंत प्रत्यक्षता को प्रत्यक्ष करता है वो वेदन से, तब उसका पुरुषार्थ का उछाला आए बिना रह नहीं सकता। जैसे दरिद्री अपने संपत्ति को घर में देखेगा तो उसको बल आ जाएगा कि मैं अभी दरिद्री नहीं हूं, मैं तो कोई धनवान हूं, श्रीमंत हूं, मैं बहुत बड़ा श्रीमंत हूं, ऐसा उसका बल उसको आए बिना रहेगा नहीं। आधार लिया है सात्विक उत्तर में, क्या बोला है भाई, आधार है, आधार मिल जाता है वहां से। भाववासन हुआ कि स्वरूप का आलंबन को हाथ में आया, वहां से फिर अनुभव होने की प्रक्रिया चालू होगी। इसलिए आगम में उसको सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा है, सम्यक तो नहीं हुआ तो मिथ्या दृष्टि कहा, तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा है। लेकिन जाति गिने तो ज्ञान की जाति बदल गई, जाति भेद हो गया वहां से। लेकिन बोले ऐसा राजमार्ग तो ऐसे ही बोलने का है, सम्यक होता है तो जाति अंतर होता है, ऐसे ही बोलने में आता है, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है। कई लोग जो शास्त्र के अभ्यासी है ना, फिर भ्रम में चढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसी बात बहुत प्रसिद्ध करने लायक नहीं है। वहां तो शास्त्र के अभ्यासी बहुत से भ्रम में चढ़ जाते हैं, तो हमको स्वरूप निश्चय हो गया, आत्मा ऐसा है कैसा है वैसा है सब जान लिया, तो हमको भी निश्चय तो हो गया, तो हमारी भी ज्ञान की जाति बदल गई कि नहीं 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 ऐसा स्वरूप निश्चय होता नहीं है। करेक्ट, अंतर्मुखता यहां से चालू होती है, पुरुषार्थ यहां से दिशा बदली ना, ज्ञान के और वीर्य के पुरुषार्थ के दोनों की दिशा बदली। माने क्या कि दिशा तो दो ही है, बाह्य दिशा थी वो बदल गई, अंदर की दिशा चालू हुई उसको अंतर्मुखता कहते हैं, उसको अंतर्मुखता भी कहते हैं और उसको स्व सन्मुखता भी कहते हैं, स्व सन्मुखता कहते हैं या अंतर्मुखता कहते हैं, दोनों एक बात है। स्व सन्मुखता का प्रयोग ज्यादा होता है इस भूमिका में, और अनुभव होने में उपयोग अंतर्मुख होता है, एकाकार होकर के अतीन्द्रिय उपयोग होता है, तो वह अंतर्मुख शब्द का प्रयोग ज्यादा शास्त्रकारों ने किया है।
तो
एक साथ है, ज्ञान में ज्ञान वेदन ही है, वेदन वेद्य वेदक भाव अपने में होने से कोई बहिर्मुख होने का सवाल नहीं होता, पर जो अपना पूरा स्वरूप पहचानने में आता है साक्षात सिद्ध पद, तो पुरुषार्थ अंदर से उछलता है, ऑटोमेटिक इस प्रक्रिया एक साथ होने लगती है। वेदकता अंतर्मुखता और पुरुषार्थ का उग्र होना एक साथ होता है, हो ही जाता है। इस तरह से आत्मा का होने का प्रमाण है, इस तरह से होने का प्रमाण है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व मालूम पड़े बिना मैं हूं वो बात आई कहां से। पर जब हमको अपने आप का निश्चय नहीं है, तो जिसको अपना निश्चय नहीं है उसको कर्तव्य और कर्तव्य का निश्चय होगा वो बात किसी तरह से बैठ सकती नहीं है। हम लोग क्या पूछते हैं कि हमको क्या करना, मतलब क्या, हमारा कर्तव्य क्या। कर्तव्य बाद में निश्चित होता है, पहला स्वरूप का निश्चय होता है। स्वरूप का निश्चय होने हुए बिना कर्तव्य निश्चय कभी हो सकता नहीं है। ये कर्तव्य के विषय में वास्तविकता ही ऐसी होती है संसार में भी कि अपना स्थान नक्की किए बिना कौन सी ड्यूटी करेंगे हम। हमारे ऑफिस में मालिक है, मैनेजर है, पियोन है, कौन है, क्लार्क है, कौन है, स्थान ही निश्चित नहीं हुआ तो ड्यूटी कैसे निश्चित हो सकती है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय भी ये लक्ष्य यानी निश्चय करने के लिए है। वो आत्मसिद्धि में गाथा आई कि नहीं आई, लक्ष्य थवाने तेहनो कया शास्त्र सुखदाय, शास्त्र के स्वाध्याय इसलिए किया है कि लक्ष्य हो जाए एक दफे, तो ये आधारभूत वस्तु है, यहाँ से सब बात आगे चलने वाली है। और दूसरा पद का जो स्वाध्याय है चल लेंगे।